टीवी शो को पूरा करने के लिए मेकअप के साथ सामने खड़े होकर बार बार टेक के बाद जो इस तरह के शो करते हैं। किसी ने हमें बताया कि आजकल कोई ऐसा कॉमेडी शो चल रहा है जिसमें लोग खूब हंसते हैं, तो लेकिन उसकी सच्चाई ये पता चले कि वो जो शो होता है वो 8 से 10 घंटे में शूट होता है और उसमें जो लोगों को बुलाया जाता है उसमें सबको 1-1 हजार रुपये मिलते हैं और जिनको जिनका मजाक उड़ाया जाता है उसको 3 हजार या 4 हजार मिलते हैं। तो इस प्रकार पूरा दिन का शो होता है और उस 10-8 घंटे की शूटिंग में जो है उसमें से आधे घंटे का या 1 घंटे का शो निकालना होता है और हमें लगता है कि बिल्कुल सब लाइव चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। हम देख भी रहे हैं कि पता भी लोगों को बिल्कुल बना रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हीरो लोगों को भी जब मूवीज देखते हैं हमें मालूम है कि इसकी उम्र इतनी नहीं, वैसे 60 साल का है लेकिन सारे बाल काले कर 15 साल की लड़की के साथ चक्कर काट रहे हैं पेड़ के पीछे, तो हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मोहित हैं, फिर भी हम आकर्षित हैं, फिर भी हम 3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। तो इस संसार में जो नकली हीरो है वो भी हमें अपने आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और हम आकर्षित हो भी जाते हैं। प्रयास को क्या करते हैं, कुछ भी करें तो हम वहां से आकर्षित हो जाते हैं। इस देश में आकर्षण की कमी नहीं है, हर व्यक्ति कहीं नहीं आकर्षित है। ऐसे ऐसे धूर्त लोग भी हैं जो कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी नई चीज बोलते हैं, हर एक को ग्राहक मिल जाते हैं, कमी नहीं है। आप कुछ भी खोल कर बैठिए आपको ग्राहक मिल जाएगा। आप कुछ आता है चलिए आता, आप एक चटाई बिछाइए उस पर एक लोहे के बोर्ड पर लिख दीजिए ज्योतिष, कमाई का बता रहे आप बैठ जाइए, इतने मूर्ख आएंगे अपने अपने हाथ लेकर और कहते सर कुछ बताओगे, वो कहता पहले कुछ तो बुढ़ाओ पैसा मांगे उससे और फिर बताओ कि आपकी मृत्यु है बुढ़ापा है बीमारी सारे कैसे बढ़ा दो दुनिया भर के। वो कहता हाँ ये वो वही है सबके साथ, हमारे पास एक व्यक्ति आ गए कि क्या कुछ बताओगे, मैंने कहा बता रहे थे, मैंने कहा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कहता आने में किसका लगता है, किसी का पढ़ाई में मन लगा भाई, क्लास में 90% बच्चों को तो लगते ही ना, जिनका लगता था वो बस साइड में कहीं आते थे। और फिर मैं बोलता था कि क्लास में स्कूल में एक टीचर बहुत पसंद था तुम्हें, वो तो होते ही था किसी ना किसी को एक टीचर वैसे बड़ा पसंद होता था। हमने ऐसे बोला कि शुरू में खेल कूद में बहुत रुचि थी आपकी, किसकी नहीं थी, मीठा बहुत पसंद है, हाँ बहुत पसंद है, ज्यादा सबको पसंद होता है, तो जो बोलो वो हाँ करेगा, ये चीजें ऐसी जो कॉमन है। तो फिर जो ये भी बोलो तो दिमाग बचपन में बहुत दिमाग है, मरते मरते बचो हाँ ऐसा बोल वो नहीं, मरते मरते बचा मुझे बताओ इतना बीमार है व्यक्ति। तो फिर हम उसको बताएंगे अब एक संघर्ष चल रहा है जीवन में, अब मुझे बताओ किसके जीवन में संघर्ष नहीं चल रहा है, कोई शारीरिक समस्या नहीं बता दो है क्या, वो होती है हर एक को 90% लोगों को, और जिन 10 को नहीं उनको पता नहीं है, ऊपर तो डेवलप हो रही है। और फिर वो कहते हैं कुछ इलाज बताओ ताकि बारे में बताओ, तो इलाज बताते हैं कि आगे कैसे चलेगा है ना, और बहुत कष्ट आएंगे, शरीर बहुत ज्यादा है वो हो जाएगा, छेड़ छेड़ हो जाएगा और तो ये सब आपकी भविष्यवाणी। तो मतलब पैसे भी देकर जाएगा, हाथ भी दिखाएगा, कुछ लाएगा भी, आप तो बोर्ड लगाकर बैठे और एक नहीं आएगा, लाइन लगी होगी और एक व्यक्ति साथ कुछ आ ना कर दीजिए भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब क्या है, संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सुंदरता ढूंढ रहा है, कोई आकर्षण ढूंढ रहा है, सुख के लिए कहीं चक्कर काट रहा है। आप मुझे बताइए अगर मंदिरों में चक्कर काटने से या पेड़ों में चक्कर काटने से या कहीं पर कुछ करने से ही इच्छाएं पूरी होती हैं तो सारी दुनिया वहां क्यों नहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और कई बार लोग बदल देते हैं अपना ठिकाना, क्योंकि एक दो कुत्ते ठीक लग गए तो तीसरा नहीं लगा तो कोई चेंज कर दे। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई कहना नहीं किसी न किसी से आकर्षित हो रहा, जिससे आकर्षित होना उसे ही हो रहा बस। इसलिए भगवान कृष्ण इस प्रकार की लीला रचते हैं, क्योंकि इस संसार में तमोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, सतोगुणी भी, और भगवान ने इतनी सुंदरता से सारे प्रकार के जीवों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग रूप और डेमिगॉड्स को छोड़ा हुआ। कुछ घनघोर तमोगुण में रहते हैं तो भगवान विष्णु से अट्रैक्टिव नहीं होते, चाहे कुछ भी करते वो किससे अट्रैक्ट होंगे, चिलम शिव से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ जो रजोगुण में देखे हैं जिनकी आकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही वो देवी से और उनके सबसे आकर्षित होंगे। जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि संघर्ष ही संघर्ष है, दुखी दुख है ना, तो सात्विक वृत्ति से जीना ज्यादा अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली कृष्ण से आकर्षित होते हैं। और जो रजोगुण में है, ये तमो होते हैं, ऐसे लोग को भी आकर्षित करने के लिए जब भगवान इस प्रकार अवतार लेते हैं और जिस नरसिंह रूप में आए, तो इस रूप में कुछ ना कुछ अब बांसुरी बजा के चले जाए कोई अट्रैक्ट हुआ तो सात्विक वृत्ति को लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो बांसुरी बजाई भगवान ने लीला रची तो उनसे वो लोग अट्रैक्ट। अब लेकिन जिनके अंदर शौर्य ज्यादा है, आप किसी को बोल सकते ये बहुत अच्छे भगवान है, इन्होंने ये किया है ये किया है, जो शक्ति शक्ति मेंटेलिटी का है कुछ बताओ क्या किया है, वो कभी बांसुरी बजाते हैं ठीक है। और कहते जमुना के जमुना के किनारे किनारे चल रहे हैं, कहते वो बताओ कहते और वो रास करते हैं, बस वो फीलिंग करवाया भगवान की तबियत का नहीं देखे, उसको तो ये बताओ कि भगवान ने कुछ किया। क्षत्रिय तुम बताओ कि भगवान ये वो है हिरण्य कश्यप जिससे सब डरते थे, उसके सामने खंभा फाड़ कर लगा के कहा अब बताओ तो क्या हो, वो क्या किया, कहते ऐसा रूप लेकर आए कि ना तो जो पशु था ना ही मनुष्य था, दोनों का मिस करके आए। हाँ ये हुई हवा और बताओ क्या हुआ, फिर कहते फिर मैंने ऐसे पकड़ा उसको ऐसे मारा और फिर बच्चे बढ़ दिया, कहते हाँ तो तुमको इस तरह पसंद आता है कि नहीं, और उनसे आकर्षित करके भगवान के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक विशेष अद्भुत रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए क्या करने के लिए, अपने दत्त प्रहलाद की रक्षा तो कर ही रहे थे पहले से, तो ऑलरेडी चल रहे थे कहीं ना कहीं से फेंक रहे थे, मार रहे थे, कढ़ाई में डाल रहे थे, तो भगवान हर समय रक्षा कर रहे। लेकिन अब क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया, पिताजी ने कह दिया कि बता कहां है तेरे भगवान, तो कहा कि इस मंदिर में भी है, तो भगवान ने अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए भाषित बात शब्दों को पूरा करने के लिए खंभे से प्रकट हो। और अब क्योंकि देवताओं ने बहुत प्रार्थना की भगवान का जो अवतार लेने का उद्देश्य होता है, वो पहले देवता लोग ऑलरेडी प्रार्थना कर चुके होते हैं, कलेश हो गए, बहुत दिक्कत हो रही है, समस्याएं चल रही है, पृथ्वी रानी गौ माता के रूप में जाती है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूं संसार में आने वाला हूं, बता दिया सब कुछ। तो देवताओं को भी जो है उनको क्या करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको फिर से उनकी खोज पर बिठाने के लिए भगवान फिर से आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बोलते हैं भगवान कृष्ण ही है, भगवान विष्णु के रूप में अपनी गदा से आक्रमण किया, जैसे बात और उन्हें मारने लगा, जो भगवान नरसिंह देव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह
चला गया
कोशिश करके भगवान को आने के लिए जंप लगा रहा था, उनकी शक्तिशाली उतना था कि छोड़ बैठे थे छाटे थे सारे देवताओं को, समझो इतने समय से उसी भाषा में तो बुरा बना रखा था, क्योंकि वो कोई डरते नहीं, डरते नहीं थे किसी से, सब कहते झाड़ू पोछा करवा के बनाते सबकी पोस्ट ले रहे थे सब इस ऐसी स्थिति। तो हिरण्यकशिपु ने हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने क्या किया, पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो देखा भगवान के लिए मरीना जाए हाथ पकड़ने पकड़ने वाले सवाल में बोलना पड़ेगा, छोड़ दिया चलो तो छोड़ दो करो आप। छूटने के बाद उसके का क्या भाव है, थोड़ा विश्राम किया उसने, तो मैं सेंसेस में हुआ क्या है और अब उसको लगा थोड़ा सांस ली, सांस उठाने चली, भगवान एक टाइम दिए जो संघर्ष कर रहा है तो भगवान अभी पकड़ के मारते थे ना, पाँव से दबा के काम कर रहे थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी तो युद्ध का मजा लेता भगवान, तो थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर अपने सेंसेस में आया, फिर वो उसको लगा कि अब जो है पूरी शक्ति के साथ फिर से अपनी ठाल करवा उठे और फिर भगवान के ऊपर आना। तो इस प्रकार की स्थिति अगर हम लोग अपनी से हम लोग में बोलते हैं, बताया लास्ट टाइम कि हम लोग भी छोटे छोटे क्या है हिरण्यकश्यप है, कहीं ना कहीं मेंटालिटी वही है भोग। तो जब व्यक्ति इस संसार में भोग करता है और भोग करने का मतलब ही है कि वो अपने को भगवान समझता है, मतलब भोग की मेंटालिटी का मतलब ही है कि वो अपने कर्ता समझता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है, और इस मेंटालिटी को चेंज करना है किसी संसार में रहकर। तो जब वो भोग करने का प्रयास करता है तो उस प्रयासों में उसको कहने में कष्ट भी आता है, दुख भी आता है, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को रचे ही ढंग से है कि हिरण्यकश्यप को जैसे को तो भगवान कह रहे मैं देख लूंगा बुला के, लेकिन जो हिरण्यकश्यप की क्वालिटी के नहीं है उस स्टैंडर्ड के नहीं, तो उनको भगवान कैसे करते हैं अपनी शक्तियों से या फिर माया के द्वारा पनिशमेंट देते हैं, छोटे छोटे पाप कर रहे हैं ना, इतने बड़े पाप भी नहीं देवताओं को परेशान किया हुआ, छोटे छोटे लोग पड़ोसियों को परेशान किया हुआ है ना, गाड़ी खड़ी कर दी है ना, कुछ भी करते हैं मतलब इस प्रकार करके, तो इस तरह के लोगों को छोटे छोटे उस तरह के हिरण्यकश्यप को। तो होता क्या है जब इन लोगों को कोई कष्ट आता है, समस्या आती है, दुख आता है, तो लोग आज बड़े सुंदर प्रवट में एक बात बता रहे हैं कि जिनको दुख आता है जगह लोग देखते हैं हम तो ठीक कर रहे हैं, हम किसी को गरीब दिलाते हैं, हम किसी को कुछ करते हैं, हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, और जो व्यक्ति सबके साथ गलत करता है, गलत से बोलता है, चोरियां करता है, ये करता है, वो करता है, और ये आगे बढ़ता जा रहा है कि नहीं, पेपर लोग बोलते हैं ऐसा, और पेपर छोड़ भी देते बच्चे उठते कहते हैं छोड़ो जब हो ही रहा है, हम सब सब ठीक ठीक रहते हैं, हमें इतने कष्ट, और ये व्यक्ति देखो कितना पूरे पूरे इलाके में बदनाम है यार, फिर भी इसकी प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहे, फिर भी इसको शायद जो है इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो केवल लोगों को लगता है मतलब शायद यही मैथड है आगे बढ़ने का, कैसे चोरी करो धांधलियां करो, तो इसी तरह से आगे बढ़ा जाता है, और कुछ होता नहीं है, भगवान बोलना शायद एक्सेस नहीं करते, नहीं तो पनिशमेंट मिलती ना, तो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, भाई उसके बाद पैसा है हर छोटी बात पैसे फेंक के बात करता है ना, तो इसका मतलब ये लगता है कि ये व्यक्ति क्या है ठीक है, इसको कष्ट भी नहीं आ रहा, तो कृपा जी बता रहे हैं कि कई बार भगवान हिरण्यकश्यप को जैसे छोड़ दिया भगवान ने, वैसे ही कई बार माया इस प्रकार के दंडियों को, इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को जैसे छोड़ छोड़ देती है, लहकर ले दो बजे करते है ना, और पाप इकट्ठे करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा पाप होंगे तो ये वही सजा है, कम पाप होंगे तो जरूर किसी और को कुछ और करना पड़ेगा, टांग खोलनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, हार्ट का बड़ा कुछ करेगा। तो इस प्रकार जब लोग देखते हैं कि गलत काम करने वाला फल फूल रहा है और अच्छे काम मतलब मैं अच्छे व्यक्ति का व्यक्ति हूं और मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा तो उसको कितना लगता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कर्म नाम की एक बहुत बड़ी फिलोसफी और हर चीज कर्मों के आधार पर घटित होती है। तो अगर हम आज अच्छे हैं और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आगे के लिए अच्छा है, और अगर किसी व्यक्ति को अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है देखने में बुरे करने पर भी, तो हो सकता है इसने पहले बहुत अच्छा किया था, उसका कुछ फल प्राप्त हुआ है किसी दिन से, लेकिन आज नहीं तो कल उसका भी अंत है, शरीर में जीर्ण होना है, बीमारियां लगनी है और सो के ऊपर पड़ता, कष्ट सहने पड़ते हैं सारे। और ऐसी स्थिति में जब लोगों के ऊपर कष्ट आते हैं तो एक बार वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया, मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा किसका दिल दुखाया है। जब लोगों को कष्ट आते हैं क्योंकि मेंटालिटी तो वही वही है, तो जब इस प्रकार व्यक्ति सोचना शुरू करता है तो रियलाइज भी करता है कि हाँ शायद इसका ना मिला हो, शायद ये ना किया हो, मेरे को याद तो नहीं आ रहा शायद पिछले जन्म में ना कुछ हो। और जब प्रार्थना करकर माफी मांगकर या कर्म का प्रारब्ध इतने समय तक ही रहना था वो खत्म होने के बाद जैसे उसको रिलीफ मिलता है, थोड़ा रिलीफ भी करता है, तो तुरंत जो मानसिक स्थिति उसकी कुछ समय थी जब वो कष्ट में था, बड़ी पेनफुल मेंटेलिटी थी उस समय, और अब जब ठीक हो गया है उस समय की मेंटेलिटी में जमीन आसमान का अंतर हो गया। जब समस्या में था तो बहुत बल था, हरे शक्ति के आगे कोशिश ये रहती थी कुछ गलत ना हो, गलत ना हो जाए, ठीक कैसे होगा, किसी तरह से हो जाए, हर जगह चक्कर में लगाता है, भगवान के पास जाता है। लेकिन जैसे ही उस कष्ट से निवृत्त होता है तो तुरंत वो मेंटेलिटी आ जाती है जो धरने के शुरू किया, वो कहता कमाल हो गया, मैं तो ऐसे चक्कर काट रहा था, बढ़िया हो गया, मौसम ने बना दिया, वहां जाके दवाई ठीक हो जाएगा, हो गया, फिर तो टाइम से परेशान रहा। या फिर मेरे दिमाग में अचानक तरीका आ गया कि अगर मैं कल से ये खाना बंद कर दूं और ऐसा करना शुरू कर दूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, हो गया ठीक। तो वो क्या समझता है, वो उस कष्ट से जब बाहर निकलता है तो उसका श्रेय किसको देता है, वो खुद को देता है कि सही समय पर सही डिसीजन ले लिया, ये तो मेरा था दिमाग, नहीं तो मैं तो ऐसे चक्कर मारता हूं मित्रों में जा जाके बाद। और फिर उसको लगता है चलो अब मैं अच्छा फील कर रहा हूं, और फिर उसकी जो टेंडेंसी है पाप करने की वो फिर से जागरूक हो जाती है, समझे। और समय ऐसा है कि वो उन घावों को भर देता है, कुछ समय के बाद ही वो फिर उस मेंटालिटी में आ जाता है, उस भोग मेंटालिटी में, उस असुर मेंटालिटी में, और उसको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया कर रही है मैं भी कर लेता और ठीक हो ही गया ना। तो फिर हिरण्यकश्यप की मेंटालिटी कि पहले तो पकड़ा गया, वो देख भी रहा है कि उससे लंबा थोड़ा एक बहुत बड़ा व्यक्ति विशेष प्रकाश में आधा नर और आधा सिंह पूरी तरह से अज्ञानता से हो गया है, छाती दर्द भगवान के सामने आने के बाद भी वो युद्ध कर रहा है, और उस कष्ट में जब था वो मुझे पकड़ा गया था तो उसकी हालत सच में खराब, लेकिन जैसे भगवान ने छोड़ दिया, जैसे कष्ट से रिलीफ मिला उसको, तो वो भूल गया कि मैं उस समय कैसी परिस्थिति में था जब मुझे पकड़ा हुआ नसीब भगवान, और अब वो फिर विषयों का चिंतन कर रहा है, अब उसकी इंद्रियां फिर से बलवान और वेगवान हो रही, अब उसका मन फिर कह रहा है कि कर लो, कौन देख रहा है, किसको पता है, सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, अकेला छोड़ जाऊंगा डर होता क्या है, हमें पता चला कि मोदी नगर में मोदी नगर में कहीं किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, तो उसने अपने ऊपर वाले के प्रति कुछ केस कर दिया, तो डिपार्टमेंट वाला आगे तोड़ने के, उसने नीचे वाले के प्रति केस कर दिया, तो कोर्ट में फैसला हुआ कि दोनों के दोनों जो एक्स्ट्रा पढ़ा होगा उनके टूट गए, उन्होंने कोर्ट में कंप्लेन कर दी, कहते हम दोनों के तोड़े हैं, बट ये तो पूरी कॉलोनी में ऐसे बने ना, तो कोर्ट ने कहा पूरी कॉलोनी के तोड़े, जो पूरी कॉलोनी के टूटे मकान, तो जो सुकून उनको मिला, जो आनंद की अनुभूति उनको वो बयां नहीं कर सकते। अकेले को कुछ होता है ना तो दर्द होता है, दुख होता है, उसको लगता है हैरेसमेंट हुई है मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, साथ में कोई और भी हो तो अच्छा लगता है, क्लास में किसी एक को मुर्गा बना देते ना बड़ा दर्द होता है, एक लड़का हो साथ में लड़का बड़ी खुशी होती है चलो वो है। तो पूरी कॉलोनी को जब पनिशमेंट मिली तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि हम ही दो नहीं है बल्कि हमारे से बहुत सारे तो जैसे हम कोई साधु के पास गया लेक्चर सुनने के बाद बोला गुरु जी आप कहते हैं 4 महीनों की बात कर रहे थे तो ये जो मांसाहार करते हैं मेरे दोस्त का पवन मोदी वो बहुत खाता है सुबह शाम वही खाता है तो उसको क्या होगा कहता हमने बापू तो डर जाएगा कहते अच्छा और कहता मेरे क्लासमेट है शुरू दोस्त पुराना वो के मेरे साथ बैठता है वो खाने का कोई शौक नहीं बट पीता हो गया कहता वो गया जाएगा कहता वो बदल जाएगा कहता अच्छा कहता एक और बड़ा दोस्त है वो ये भी करता है ये भी करता है अब संबंध बहुत रखता है तो वो कहा जाएगा कहता वो वही जाएगा कहता अच्छा कहते हैं सारे मेरे दोस्त वही जाएंगे तो मैं अकेला यार क्या करूंगा तो कहने का मतलब क्या है एक सुकून ये मिलता है कि सारे नहीं सब जा रहे हैं मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं तो इस तरह की ऐसे वातावरण को देखकर अगर सारे पाप कर रहे थे तो सारे पाप करते थे सिर्फ मैं अकेला सोच रहा क्या करूंगा ट्रांसेंडेंटल कथा कर रहे हैं इसको इस जीवन से बदले ना भगवान कृष्ण कहते हैं हमको खबर नहीं है कि प्रभाव होते हैं आज ही मक्खन बिलोकर जो मक्खन निकाला है तो सब कहते हैं चलो हो जाए हरे बाबा कहते तो सुबल कहते हैं अरे अभी तो तुमने खाया था ढेर सारा मक्खन तुम्हें फिर भूख लगी तो कहते भाई मुझे तो लग रही पर उसको कहते दूसरा मक्खन मतलब मैंने कहा मुझे भी लग रही मतलब हम तो जा रहे हैं खाने के लिए अब वो चला गया दूसरा भी चला गया तीसरा भी चला गया सुबल कह रहे हैं तो माला जब ये नहीं सुन रहे तो मैं अकेला सुधर के क्या करता तो वो भी चला जाता है और पकड़े भी जाते हैं वहां तो ये है दिव्य धरातल पर ट्रांसेंडेंटल लीला जिसको सुनकर हमारे पाप खत्म होते हैं और यहाँ पर दूसरों के कुकर्म सुनकर और उस तरह के कर्म हमारे पाप बढ़ते हैं तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों को पाप करता देख लोगों को बहुत ही सुकून मिलता है जो खुद कष्ट में है दूसरे को भी कष्ट में देख तो ये उनके इंस्पिरेशन का सोर्स है जितना अकेला नहीं दूसरे को रोग है ये बहुत बड़ा मतलब रोग है तो फिर क्या होता है इस तरह की इंस्पिरेशन मिलने के बाद व्यक्ति क्या करता है फिर से पाप कर्म गलत हो जाता है और अपने अपनी पूरे पनिशमेंट्स को भूल जाता है अपने कर्मों के पूरे फलों को भूल जाता है जो उसको प्राप्त हो रहे तो यहाँ हिरण्य कृष्ण को जो उसका फल प्राप्त हो रहा है और भगवान ने थोड़ा सा उसको रिलीफ किया कि चलो सांस ले लो थोड़ा सा तो वो अपने चेतना में फिर आया और उसको लगा कि मैं हिरण्य कृष्ण को है ना तो फिर से पूरी ऊर्जा के साथ वो भगवान बैठे यहां पर इस पूरी घटना को जितनी सुंदर घटना है इस घटना को देखने का अलग अलग तरीका है ये ठीक उसी प्रकार है जब कृष्ण बलराम एक वल्लभ पेड़ नाम के हाथी को मारते हैं जब वो एंटर करते उस युद्ध में जहां की कंस ने बनाया था चाणक्य ऋषि के लिए उनको बुलाया था तो जब हाथी को मारते तो दांत तोड़ते हैं हाथी के और ऐसे घुमा क्यों चलते बता दें तो वहां पर सारे लोग बैठे होते अब हर व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखकर एक अलग ही भाव अर्जित हो रहा होता है क्या जो वहां की साधारण जनता थी पुरुष लोग थे भगवान कृष्ण का स्वरूप देखकर हाथ में गला देखकर कहते हैं बेस्ट मैन वन और ये कमाल का शरीर है कमाल की सुंदरता है ना उनके माता पिता पर बच्चे मार रहे थे अगर हाथी को मार देते हैं इसलिए कृष्ण हमारे दादा के बच्चे हैं है ना तो हर व्यक्ति को अलग रूप में दिखाई दे रहे किसी को काल रूप में दिखाई दे रहे गोपियों को मतलब हाँ जो स्त्रियां थी उनको साक्षात कामदेव के रूप में लग रहे थे तो जब तो भगवान कृष्ण को ये रूप देखकर हरिशुद्धि को अलग रखा तो इधर नरसिंह भगवान को भी रूप देखकर सब लोग की अलग अलग भावना इस रूप में इस प्रसंग को पढ़कर अगर प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्य कृष्ण को आ गए हो नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद के सामने क्या है साक्षात जिनको हमेशा स्मरण करते थे साक्षात भगवान उनके लिए उनकी लाइसेंस हो गए। इसलिए अगर सबको भय लग रहा है प्रहलाद को नहीं लग रहा, छोटा सा 5 साल बच्चा और आज तक अगर उसने भक्ति करी है तो हिरण्यकश्यप रूप में नहीं की थी, शायद विष्णु रूप में की थी, उसको भी नहीं पता था कि सुनता है। और एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जितनी भक्ति करता रहा अचानक इस रूप में आता है, मतलब हम लोग जैसे कर रहे हैं भक्ति संत माला कर रहे हैं और अचानक तो भगवान थोड़ा देखकर रूप लेकर हमारे सामने प्रकट हो जाए और भगवान का जो प्रकाश है तो भगवान देखिए भक्त आगे सर और सब छुपे पड़े, फोन आ गया, फोन आ गया, हो गया, कुछ नहीं कर दिए, भक्त सारे क्या कर सकते हैं। उस तरह का भाव होना चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज क्योंकि कहते हैं अभय चरणार विंदले, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर लिया वो अभय, उसको पहले ही प्रहलाद हो जाता है, वो डरता नहीं, तो उसको अभय और नहीं था। तो जब भगवान के सामने प्रकट हुए तो सब कांप रहे थे, सब देख कर डर रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनका संबंध एकदम अलग है। हिरण्यकश्यप को किस रूप में देख रहा था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे भाई का वध करने वाला, मेरा जिससे मेरे बचपन से लेकर अभी तक क्या कर रहा हूं, इससे नफरत किए मैंने, है ना, वो मेरे सामने है तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आ गए मेरे सामने, है ना, मेरे बच्चा किडनैप किया प्रकार को और उसे बोला पता कर मेरे पिताजी जो भगवान ने निकाल था इसमें क्या, और उसने बता दिया मैंने इधर ही है, पर फिर बोल दिया कि इधर ही तो उधर से निकाल किडनैप में जैसे तो करके ना आप छुड़ाया मार तो निकल आया साक्षात। तो अब वो उनको पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है भगवान को। तो एक अलग मेंटालिटी है, भोग की पराकाष्ठा, स्वयं भगवान बनना और जो समकक्ष है या ऊपर है खत्म करना, थोड़ी सी पावर है मिली भगवान के द्वारा ही तो वो स्वयं भगवान बनना चाहता है, भस्मासुर की तरह उसको वरदान प्राप्त हो तो उनका पहले शिव के ऊपर इसको देखो चलता ही नहीं चलता है ना, ये इसके साथ इतनी सुंदर स्त्री कौन बैठी है पार्वती जी, है ना, इसको तो इनके साथ होने नहीं चाहिए, इनके साथ तो मैं अच्छा लगता हूँ। तो कहते ठीक है जो वरदान दिया हाथ रखने वाला पहले शिव जी के ऊपर रखो, तो खत्म करके वो ज्यादा बड़ा भोगी बना जाता। तो अगर आज हिरण्यकश्यप के सामने भगवान प्रकट हो गए तो चाहते हैं कि मैं आज उनको हमेशा के लिए समाप्ति कर दूं ताकि फिर और कोई ना हो मेरे सामने मेरे बराबर। तो और नास्तिक लोग देवता लोग कैसे देख रहे थे, देवता लोग तो कुछ पता नहीं, सकाम करके बोले गए तो ठीक है भगवान प्रकट हो गए ऐश्वर्य में धीरे धीरे आऊंगा, मालूम है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब देवता लोग देखते हैं कि स्वयं भगवान आ गए और युद्ध हो रहा है तो जब ये छोड़ा नहीं करके जब पकड़ लिया तो खुश हो गए, आप ऐसे थे ये देखोगे कभी, है ना। तो उसमें होता है कि कई बार जीत रहे तो बड़ी खुशी होती है, तो कई बार हार रहे तो बड़ा दुख होता है। तो ये मैच हिरण्यकश्यप वर्सेस नरसिंह भगवान कई कलिकाल बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे, क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप ने कहीं देख लिया कि कौन कौन हंस रहा है तो बड़ी मार मारेंगे, है ना, वो डरे तो बड़ी डरते थे ना बोलकर, और कहां छुपे हुए बादलों के पीछे छुपे हुए ऐसे ऐसे करके देख रहे, और जब पकड़ लिया तो सामने आ गया कि ठक्कर को भी देख लो तो पकड़ लिया, अब जब छोड़ दिया तो फिर बादलों के पीछे भगवान क्या हो गया, ये ऐसी हालत। देवता लोग भी थोड़ा सा छोड़ने पर कई बार उनको लगता था कि ये कुछ उल्टा हो जाएगा क्या, है समझे, हार आ जाएगा एक बंदा, है ना, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर हमारा कोई चांस नहीं। तो कई बार बोलते थे देखिए राइट के साइड में भी बोला हमने भैया रात टाइम हो रहा है 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है और ऐसे में असुरों की शक्ति और बढ़ जाती है, मतलब अगर अभी आपसे नहीं समझ रहा तो शक्ति बढ़ने में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो देवता लोग इस पत्र का उनको लगता भी था और इधर होगा भी बड़ा आसार कैसा रहेगा देवताओं की स्थिति है, तो देवता लोग डरे हुए हैं, कंफ्यूज है ना, जैसे सट्टा लगाया कौन जीतेगा कौन जीतेगा, तो देवता भी कंफ्यूज है कौन जीतेगा। और हम जैसे भक्त हम लोगों को क्या इस प्रसंग से लेना चाहिए, अगर हम लोग इमोशनल सर्विस में लग गए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, तो निश्चित रूप से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज, उनके आचरण से सीखना कि किस प्रकार अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, मतलब कोई हेतु नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने नहीं बोला कि मैं चैंटिंग कर रहा हूं तुम्हें वाला तो मुझे ये दे देना, ऐसा नहीं होगा, कोई हेतु नहीं होगा। ये हेतु भी नहीं था कि भगवान मैं आपकी माला कर रहा हूं लेकिन जो मेरे पैर से नीचे फेंकेंगे तो प्लीज आप बचा लेना, ये भी हेतु नहीं था उसका। अहेतु मतलब भक्ति के आधार पर कुछ मानते नहीं थे भगवान से, किसी तरह की इच्छा नहीं रखते थे, तो अहेतु थी। और प्रति हजार पाठ कि अनइंटरप्टेड, कोई रुकावट भी नहीं थी कि आज संडे आज छोड़ दो, है ना, कई भक्तों होते ऐसे कि छह दिन अगर मंदिर आते तो छह दिन माला का रूटीन है, जिस दिन संडे है तो भक्ति से ही छूट गए, नहीं अप्रति हजार नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली वो भगवान का स्मरण करते रहे। और फिर नास्तिक विधि के लोग हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान के इस प्रसंग कैसे लेते बताते हैं, जैसे विदेशों में कई बार कुछ क्रिश्चियंस ने केस कर दिया इस बार कि भैया ये लोग हिंदू फिलोसफी अपना रहे हैं और हमारे देश के लोग एक ऐसे भगवान को पूज रहे हैं ना तो जो मनुष्य है वो ही पशु, आधा शेर है और आधा मनुष्य और बड़े सारे हाथ है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो नास्तिक लोगों की बुद्धि में नहीं घुसे गए। तो नास्तिक लोग भी लक्ष्य ये स्पोर्ट में लेके उठो, ऑब्वियसली जीते हमें। तो कहने का क्या मतलब, नास्तिक लोग उसको से पहले दिखाओ तो मानूंगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा, ऐसे थोड़ी होते भगवान, भगवान जैसे वैसे रहे, और नहीं पहले दिखाओ तो मानेंगे। एक बार ऐसी लड़का पहुंच गया साधु के पास, सुना जी बहुत भगवान भगवान करते हो, है तो दिखाओ, साधु लगा ही पैसे आ गया बीच में, क्या बताओ उसको, मैं जो जितने मुझे बात है बताओ, श्लोक कौन कर दो थोड़ी समझेगा, अगर किसी आदमी ने लिखी होगी किसी के लिखी है ना जी, मैं लिखूंगा किताब तो नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा ठीक है काम करो, भगवान को देखना चाहते थे, देखना कहते ठीक है काम करो, आप एक बर्तन लेकर आओ उसमें पानी डाल के दो, तो रोजी गया कहते अच्छा कहते डब्बे से नमक निकालो दो चम्मच उसमें डाल दो, हिला हिला दिया कहते नमक है से कहता नहीं मिल गया, कहता पान कहते निकालो दो चम्मच डॉक्टर से कहते कैसे निकल गया मिल गया सर नमक कहते अच्छा कहते इसको जरा आग पे चढ़ा दो, कहते चढ़ा दिया चलता चलता पानी जो है वाष्प होकर खत्म हो गया, कहता आप देखो उसके अंदर, कहता हाँ वो नमक है दो चम्मच नमक है। तो कहते भगवान को अगर देखना है तो उसके लिए ही प्रोसीजर है, उसके लिए तप करना पड़ेगा, आग में बैठना पड़ेगा, कहता सर लगेगा, कहने का मतलब है कि भगवान को देखने का प्रोसीजर है भगवान का नाम लेना, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, तब हम लोग उस प्रोसेस के द्वारा भगवान को देख सकते हैं, इस प्रकार चैलेंजिंग वे में नहीं देख सकते। तो नास्तिक वृत्ति के लोग जो है उनको भगवान दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो अलग अलग भक्त को इस कथा से अलग अलग इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन हम जैसे भक्तों को चाहिए कि हम प्रहलाद महाराज के आचरण को अपने जीवन, मतलब उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें ताकि हम लोग भी भगवान का आसान से दर्शन कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण, जैसे वो प्रश्न की जिज्ञासा है ठीक है, ग्रंथ शिव भागवत की किताई को